So welcome to Anurag Miners for my podcast. This is episode 42 of the podcast. And before I start the podcast, a small appeal to please support the podcast. All the links for Patreon, Buy Me a Coffee and PayPal are mentioned in the description box. So आज के podcast के guest हैं गौरव शिंदे. गौरव से मेरी बात Twitter पे हुई, जहां इन्होंने मुझे एक race के बारे में बताया जिसमें ये पार्ट लेने जा रहे हैं. तो इस रेस के बारे में जब मैंने पढ़ना शुरू किया, देन आई गॉट इंट्रीग्ड बाय द काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव डिस्कवर्ड. सो दिस इज नोन एज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सेलिंग रेस इन द वर्ल्ड. व्हाई इज इट डेंजरस? बिकॉज वन हैव टू ट्रेवल 27,000 माइल्स अराउंड द वर्ल्ड, मोर देन 27,000 माइल्स अराउंड द वर्ल्ड अलोन इन द बोट विदाउट एनी स्पेशल मॉडर्न टेक्नोलॉजी. द पार्टिसिपेंट विल बी alone in the sea for more than 200 days, no contact with outside world, family, friends, nothing. There are also many controversies around the race because one participant's psychological condition have deteriorated during the race because of the solitude and many other factors, and he allegedly died by suicide. So there are many films, documentaries and literature produced on this race, and many incidents, unique incidents have happened during this race. तो आज हम जानेंगे इस यूनिक और कॉन्ट्रोवर्शियल रेस के बारे में, एंड वील ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड अंडर वॉट पर्टिकुलर माइंड सेट वन डिसाइड टू गो फॉर दिस काइंड ऑफ स्पोर्ट विच रियली टेस्ट द एंड्योरेंस पावर ऑफ अ ह्यूमन बींग. सो आई विल गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट गौरव. गौरव इज फ्रॉम मुंबई एंड नाउअडेज ही इज लिविंग एंड वर्किंग इन कैनेडा. He comes from a Bahujan community. He is the second Indian to participate in this sailing race called Golden Globe Race. So first of all, welcome Gaurav to the podcast. And without wasting any time, let's begin the podcast. And my first question to you is that what is the history of this particular race and why it is considered so controversial and dangerous?
Thank you, Anurag. I'm absolutely pleased to be here. मतलब ये जब ये, so if I go back into history again, जब ये 1968 में ये race पहली बार हुई, तो it was the last big obstacle left in human adventure. Humans space में पहुंच चुके थे, humans ने Mount Everest climb कर लिया था, but कभी humans में sailing round the world solo और non-stop नहीं किया था. जो मतलब सेलिंग वॉज वन ऑफ द फर्स्ट प्राइमरी फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड अराउंड द वर्ल्ड, बट किसी ने कभी ऐसा पूरा दुनिया नहीं देखा था एक टाइम पे और सोलो. तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. और मतलब पब्लिक बोलती, तभी लोगों सोचता था कि चलो बोट तो हैंडल कर लेगी, बोट बना लेंगे एक स्ट्रॉन्ग वाली. But for a man to handle 300 odd days at sea alone without any contact with the outside world, क्योंकि तभी GPS नहीं था, तभी radio communications was not that good. तो अगर तुम एक बार sea पे चले जाओ तो तुम्हारा radio communications was within a certain range, and जब तुम Indian Ocean के एकदम southern part में हो, Pacific Ocean के southern part में हो, तभी कोई land बहुत दूर है, rescue तो possible ही नहीं है. तो वैसा था. और मतलब बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टाइम, किसी को पता नहीं था प्रिपेयर कैसे करें, तो अलग अलग
इसका इसका स्टार्ट और क्या एक थोड़ा सा इसका रूल्स किस तरह के हैं वो थोड़ा सा एक इसके बारे में बताइए.
तो रूल्स इसके बिल्कुल सिंपल है. तो यू हैव वन बोट विच इज 1832 टू 36 फुट लॉन्ग बोट्स मेड ऑफ फाइबर ग्लास और एनी अदर मटीरियल. मतलब तभी के रेस में, अभी के रेस में इट्स ओनली फाइबर ग्लास, बट तभी इट वॉज एनी मटीरियल ऑफ बोट यू हैव. और यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ पोर्ट इन यूरोप, और तुम्हें साउथ जाना है टू द अटलांटिक, टर्न लेफ्ट अंडर अफ्रीका, सेल सीधा अंडर ऑस्ट्रेलिया, अंडर न्यूजीलैंड एंड थ्रू द पैसिफिक ओशन, उसके बाद अंडर साउथ अमेरिका एंड देन गो बैक अप. तो राउंड द वर्ल्ड solo non-stop ka rules rehta, you start and finish in the same place.
And how many days it take?
At that time it was not known. Right now agar sabse high tech boats hote hai wo 40 days mein karte hai, sabse low tech boats jo hamare race ke boats hai wo 300 din mein karte hai.
300 days alone in the sea.
Yes. So the rule is basically you have to start and finish in the same port, cross the equator from both sides, and go through all the longitudes of the world. Or you cannot use any of the canals, जो अपना Suez Canal है, Panama Canal है, जिसकी वजह से वो around the world short हो जाता है, वो use नहीं कर सकते. Or you have to cross every longitude possible.
So you're going to stay for 250 to 300 days alone in the sea.
हाँ, yes.
So मेरा सबसे पहला question ये कि you are married, so what is the reaction of your wife that you will be alone in this difficult race? So what is her reaction?
मतलब ऐसी बात है कि
can you contact her during the race?
नहीं, I cannot contact any family, anyone. तो मैं सिर्फ जो भी समुंदर पे है, if there is a ship, a boat, anyone who is a sea station बोलते हैं उसको, उनके हाथ में कांटेक्ट कर सकता हूँ, but anyone on land I cannot contact. Land पे मैं सिर्फ ऑर्गेनाइजर से बात कर सकता हूँ, that is also for safety reasons. Otherwise मैं किसी से बात नहीं कर सकता. और मुझे जो इक्विपमेंट यूज करना है वो 1968 का इक्विपमेंट यूज करना है. तो मुझे कोई भी सैटेलाइट फोन यूज नहीं कर सकता. जो नए फॉर्म्स ऑफ रेडियो कम्युनिकेशन है, लाइक हैम रेडियो से यू कैन स्पीक टू मोस्ट ऑफ लाइक एनीवेयर, ऑलमोस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वो सब नहीं कर सकते. तो ये जस्ट मरीन रेडियो रहेगा, जो शिप टू शिप रेडियो रहता है बेसिकली.
देन हाउ डू पीपल स्पेंड देयर टाइम अलोन एट द शिप?
तो बोट में ऐसा रहता है कि रोज कुछ काम ना काम तो निकल ही जाता है. तो इट्स सो 24 आवर्स रहता है. यू आर ऑलवेज, ऐसा नहीं होता है कि यू स्लीप 8 आवर्स और फिर 12 घंटे काम करो, ऐसा नहीं होता. यू आर 2 आवर्स ऑन, 2 आवर्स ऑफ, 1 आवर ऑन, 1 आवर ऑफ, 20 मिनट्स ऑन, 20 मिनट्स ऑफ इन अ क्राउडेड एरिया जहाँ पे शिप्स होंगे. तो वैसा रहता है. तो 20 मिनट सोने मिलता है उसके बीच में, और फिर 20 मिनट जो काम करना होता है उसमें चेक करना होता है कि विंड कहाँ से आ रहा है, इज द बोट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, बोट में कुछ रिपेयर्स होते हैं. 300 दिन में बोट में डैमेज तो आना ही है. 40 फुट वेव्स रहते हैं सदर्न ओशन में, तो बोट्स को स्ट्रेस होता है. तो देयर विल बी रोप्स टूट जाते हैं. तो रोज बोट का इंस्पेक्शन करना पड़ता है, और इंस्पेक्शन करके फिर रिपेयर करना पड़ता है. तो बेसिकली एक बोट के अंदर वर्कशॉप भी कैरी करना है खुद से, और कुछ भी रिपेयर हुआ तो उसको ठीक करवाना है. खाना पकाना है, खाना खाना है, थोड़ा रेस्ट लेना है.
लेकिन वो खाना तो, मतलब 200 दिन का एक साथ लेके चलोगे?
यस.
तो वो ऐसे कैसे, मतलब क्या लेके चलोगे जो कि खराब नहीं होगा 200
तो
50 दिन?
जब ये 1968 का रेस हुआ था, या किसी अभी जो रिसेंट रेसेस भी थे, उन्होंने पब्लिक ने कैंड फूड लिया था, कैंस भर भर के ले लिए थे. और सॉरी टू से बट इन द वेस्ट उनका खाना तो मतलब बहुत सिंपल रहता है, अपने जैसे मसाला ही डाल के कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन नहीं होते. तो उनको क्या है, टिंड हैम होता है, टिंड चिकन होता है, खा लेते और जी लेते.
तो मेरे लिए थोड़ा चिकन
65 वो सब तो नहीं मिलेगा. बट मैं तो मतलब फ्रीज ड्राइड फूड कैरी करूंगा. तो अभी जो नया टेक्नोलॉजी का फ्रीज ड्राइड फूड है वो काफ़ी लाइट होता है एंड काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है, तो वो कैरी करूंगा. तो फिर सिर्फ बॉईल करना है, पानी उसमें डालना है और ये करना है. पर वो ये भी पे पानी होना चाहिए. पानी का प्रॉब्लम होता है कि हम 200 गैलन का टैंक्स है बोट में, तो वो लेके निकलेंगे. हमारे पास कोई वाटर मेकर नहीं होता बोट पे. तो देर इज अ वाटर मेकर विच इज अवेलेबल फॉर बोट्स, बट हमारे बोट पर अलाउड नहीं होता, रेस में अलाउड नहीं होता. तो बारिश की थी तो बारिश का पानी पकड़ो. अगर तुम 200 गैलन,
अच्छा वहाँ वाटर भी अलाउड नहीं है, एक्स्ट्रा कोई अलाउड नहीं है, तो वो वही पानी आपको 200 दिन तक कैसे चलाओगे, इतना पानी कैसे चलाओगे?
तो वही राशन करना है, और फिर बारिश अभी गिरेगी, बारिश पकड़ना है. अभी मैच जैसा हुआ,
अच्छा, जब बारिश आएगी तो देन यू मतलब उसको
कैच द रेन वाटर. अभी मैं वैसे मेरे बोट में एक कॉन्ट्रैप्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आई कैन कैच द वाटर. तो अभी मेरे जैसे जो 2-4 कंपेरेटिव लोग हैं रेस में, तो हम स्टंट करेंगे. वी विल लीव द रेस स्टार्ट लाइन विथ हाफ टैंक्स फुल, क्योंकि 100 गैलन का वजन बोट पे कम हो जाएगा तो बोट फास्ट जाएगी. तो और फिर वो वी कैन जस्ट प्रे कि रास्ते में बारिश गिरते रहे और हम पानी पकड़ते रहे.
जब इस रेस के बारे में मैं पढ़ रहा था तो दो कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक लगे. तो एक का नाम था डोनाल्ड क्रोहर्स्ट, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, डोनाल्ड क्रोहर्स्ट. और दूसरे कैरेक्टर का नाम मैं थोड़ी देर में बताऊंगा. तो तो हम पहले कैरेक्टर पे आते हैं, डोनाल्ड क्रोहर्स्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए कि इनकी स्टोरी क्या थी। इनफैक्ट इनकी स्टोरी पे बहुत सी फिल्में और आर्टवर्क भी बन चुके हैं।
एक्चुअली डोनाल्ड क्रोहर्स्ट का तो इंडिया से कनेक्शन भी है, ही वाज बोर्न इन कानपुर,
गाजियाबाद
में, सॉरी, हाँ, गाजियाबाद में ड्यूरिंग द राज,
ब्रिटिश राज।
तो वो बेसिकली जब ये रेस डिक्लेयर हुई तो यू नो ब्रिटिश लोगों में काफी पायनियरिंग स्पिरिट था कि इन्होंने दे वर द फर्स्ट टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, मतलब इवन दो ही वाज न्यूजीलैंड बट ही वाज पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, तो ये और जो नॉर्थ पोल साउथ पोल जाने के लिए फर्स्ट एक्सपीडिशन थे सारे ब्रिटिश थे, तो वो ब्रिटिश लोगों में काफी उत्साह था कि मतलब हर चीज जो पहला करेंगे हम करेंगे, तो उसके वजह से ये जब ये रेस डिक्लेयर हुई तो ऐसे दूसरा कैरेक्टर आ गया, तो उसमें से ये एक डोनाल्ड क्रोहर्स्ट था और इसको लगा कि ही कैन डू इट। उसने ज्यादा सेलिंग की नहीं थी जिंदगी में, बट ही वेंट इनटू द रेस, उसने थोड़ी लोन ले ली, बिल्ट अ बोट खुद से, उसने डिजाइन किया, मतलब ही वॉज अ डिजाइनर, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइनर, तो मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन करता था, तो उसने खुद से बोट डिजाइन की और बोट वॉज नॉट रेडी फॉर द रेस एंड बिकॉज ऑफ स्पॉन्सर के प्रेशर की वजह से वो निकल गया और उसकी बोट को रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे, बहुत स्लो जा रहा था एंड बाय द टाइम मोस्ट ऑफ द कंपेरेटर्स वर ऑलमोस्ट हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड, ये अटलांटिक में अटका हुआ था, तो इसने ऐसे सोचा कि मैं क्या करूँगा कि अभी उस इस जमाने का तो है नहीं कि हम GPS से ट्रैक करें, देर वॉज नो ट्रैकिंग, देर वॉज बेसिकली तुम लॉग बुक अपना खुद का लिख रहे हो और कभी ना कभी बीच में एक रेडियो कॉन्टैक्ट कर रहे हो, बता रहे हो मेरा पोजिशन क्या है टू द ऑर्गेनाइजर्स, तो ही सेड अभी आई कैन फूल द वर्ल्ड, तो ही केप्ट सेंडिंग रेडियो ट्रांसमिशंस की मैं वो खुद से कैलकुलेशन करने लगा कि हाउ फार आई कैन कीप गोइंग एट अ फास्ट पेस, पर वो ही वॉज स्टिल इन द अटलांटिक बट ही केप्ट टेलिंग मैं ऑस्ट्रेलिया क्रॉस कर लिया, अभी मैं पैसिफिक ओशन में हूँ, मैं इतने फास्ट जा रहा हूँ, मैंने एक दिन तो उसने लैंड स्पीड रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया था तभी का ऑफ 100 miles, हाँ पूरा झूठ था, तो एक डॉक्यूमेंट्री है उसमें बोलते हैं कि वो अर्जेंटीना में चला गया था, अर्जेंटीना के कोई छोटे से गांव में किसी को इंग्लिश नहीं आता, उधर जाके उसने खाना पीना एक्स्ट्रा ले लिया, बोट रिपेयर करवा लिया और निकल गया वहां से फिर, और फिर क्या हुआ कि रेस में सिर्फ 3 कंपेरेटर बाकी थे तभी और 3 में से एक की बोट की हालत बहुत खराब थी गोइंग टुवर्ड्स द फिनिश लाइन, और दूसरा था सर रॉबिन नॉक्स जॉनसन हु वाज विनिंग, तो पर प्रॉब्लम क्या हो गया जब ही दिस गाय डोनाल्ड ट्राइड एक्टिंग लाइक आई एम जॉइनिंग द रेस बैक अगेन, तो जो फर्स्ट जो था उसको प्रेशर आ गया, नाइजल टेटली, उसने बोट को थोड़ा ज्यादा प्रेशर किया, उसकी बोट सिंक हो गई, तो बेसिकली डोनाल्ड क्रोहस बिकेम फर्स्ट इन द रेस एट दैट पॉइंट, मतलब ही हैड नॉट गॉन राउंड द वर्ल्ड बट इन द पोजिशन ही वॉज फर्स्ट, तो अगर वो फिनिश करता तो इट वुड हैव बीन स्क्रूटिनी होती कि उसको क्या लगा कि मैं थर्ड फोर्थ फिनिश करूंगा, कोई स्क्रूटिनाइज नहीं करेगा कि मैंने राउंड द वर्ल्ड एक्चुअली किया कि नहीं और मैं चला जाऊंगा इन द सनसेट, बट देन वो प्रेशर आ गया एंड देन हिज लॉग बुक्स वर डिस्कवर्ड, उसने खुद का एक रिलीजन डिस्कवर कर लिया था, ही वॉज द गॉड इन दैट, ही वॉज द मसाया, वो थोड़ा द प्रेशर ऑफ ऑल दोज थिंग्स हैड गॉन टू हिम, और वो either he committed suicide or he fell off the boat in jo bhi ho raha tha uske mind mein nobody knows, wo to matlab has gone to the bottom of the ocean with him, but uske jab bhi boat bahut mahino baad boat mili kisi ek merchant ship ko to ye log books mile, to log books mein 2 log books the, ek log books mein actual location tha aur ek log book mein fake locations the, और एक लॉग बुक में उसके बाद पूरा वो डायरी था जो उसके दिमाग में चल रहा था एंड दिस इज अ मूवी अबाउट इट एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग।
इनफैक्ट जो मैं पढ़ रहा था जब लॉग बुक, सो ही मतलब उसमें रैंडम सेंटेंसेस, लॉग बुक नहीं, वो जो एक अलग से बुक लिखी जिसमें डायरी लिखी और उसमें अपनी फिलॉसफी और वो सब वो नोट कर रहा था, तो ही कैन नॉट सी एनी पर्पस इन द गेम, मस्ट रिजाइन पोजिशन इन द सेंस दैट if set myself impossible task then nothing achieved by the game, now the true nature and the purpose and the power of the game revealed so now it's time to resign from the game, and then he died, so he I don't know, he was also looking at it from the philosophy of life somehow, this game became the philosophy of life, and that's I mean it's a very strange diary
ek ha matlab I actually met his son in 2019, तो
अच्छा
थोड़ी बहुत बात हुई इसके बारे में. तो उसने बोला कि नॉट एवरीथिंग दैट यू सी इन द मीडिया इज ट्रू, बट मतलब मुझे तो मतलब आई डिड नॉट हैव अ पॉलिटिकली करेक्ट वे टू आस्क व्हाट इज नॉट ट्रू कि क्या सच्चाई है. बट मे बी वन डे वापस कभी मिलेंगे तो पूछूंगा मैं.
बट इज देयर एक इस तरह के जितने भी स्पोर्ट होते हैं कि उसका एक एक लार्जर लाइफ से जुड़ा हुआ एक फिलोसफिकल आइडिया भी इसके अंदर रहता है कि व्हेन यू फिनिश इट यू लर्न समथिंग न्यू अबाउट लाइफ और सम न्यू फिलोसफी. और ये जो एंड्योरेंस है या फिर जिसमें आपको मुसीबतें आ रही हैं, लहरें आ रही हैं, अकेला रहना पड़ रहा है, तो दिस डेवलप अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर और डेवलप अ डिफरेंट काइंड ऑफ फिलोसफी विद इन यू. जैसे इनकी डेवलप हुई, वो तो खैर अब वो अच्छी है बुरी है वो तो लोग जज करेंगे, बट ऑन अ पर्सनल लेवल डज इट चेंज यू एज अ पर्सन?
एब्सोल्युटली आई थिंक पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है. व्हेन जब तुम समुंदर में जा रहे हो और तुम्हारे बोट के पीछे से 50 फुट की वेव आ रही है, तभी मतलब क्या ही सोचोगे. तो मतलब इट्स एंड देन द वास्टनेस ऑफ द सी व्हेन यू आर आउट देयर. और 1 महीना मतलब माय लॉन्गेस्ट राइट नाउ एट सी हैज बीन 1 मंथ 31 डेज.
वन
तो
मंथ इन द सी.
1 मंथ इन द सी. तो व्हेन यू आर लुकिंग आउटसाइड जो वास्टनेस है इट्स क्रेजी. और तभी मैं पैसिफिक के थ्रू जा रहा था. तो तभी देर वॉज अ पॉइंट कॉल्ड पॉइंट नीमो जहाँ पे देर वॉज नो रेस्क्यू पॉसिबल. एंड द क्लोजेस्ट ह्यूमंस टू मी वर द एस्ट्रोनॉट्स ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. तो दे वर क्लोजर टू मी देन एनी अदर ह्यूमन बींग इन द वर्ल्ड.
एस्ट्रोनॉट एज इन
जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऊपर है ना स्काई में, तो दैट वॉज क्लोजर टू मी एट दैट पॉइंट इन मिडल ऑफ द पैसिफिक ओशन देन एनी लैंड.
ओ आई सी,
हाँ तो
दैट्स स्ट्रेंज. राइट,
हाँ इवन आई थिंक अबाउट इट. जो मैं रेस कर रहा हूँ तो ये क्या मतलब वॉट इज रियली द अचीवमेंट एट द एंड ऑफ द डे इन दैट. क्योंकि इट्स नॉट अ रेस, इट्स एन एडवेंचर. इट्स अ मोर एक सेल्फ डिस्कवरी का इट्स अ एडवेंचर ऑफ सेल्फ डिस्कवरी मोर देन एनीथिंग एल्स. और आई डोंट थिंक एट द एंड ऑफ द डे इफ आई विन और लूज कुछ मैटर करेगा. बस किया है वो इट विल बी अ माई कैरेक्टर चेंज. मतलब जब मैंने जब पैसिफिक क्वेश्चन किया मतलब आई वॉज अ वेरी कंपेटिटिव वेरी गंग हो मतलब काफी इंटेंस आदमी था मैं तभी. और वो करने के बाद मुझे सीरियसली कोई आके तमाशा ही मार दे तो मैं कुछ नहीं बोलता. तो जो करना है कर ले यार, मतलब जिंदगी कुछ बदल ही नहीं वाली मेरी. सो इट्स इट चेंजेस यू.
जो मैं दूसरे इस पर्टिकुलर रेस के जो चैंपियन है या जो एक यूनिक कैरेक्टर है उनकी मैं बात करूं, तो बर्नार्ड मोटेसियार जो है, फ्रेंच फ्रेंच सेलर जो है, उनकी भी अपनी एक यूनिक स्टोरी है. तो जो आपने फिलोसफिकली जो समझाया शायद उसके लिए ये परफेक्ट होंगे, तो इसके इनके बारे में थोड़ा सा आप बताइए.
तो ये बेसिकली एट दैट पॉइंट जब वो रेस हुआ 1968 में, ही वाज पॉसिबली द मोस्ट एक्सपीरियंस सेलर इन द वर्ल्ड एट दैट पॉइंट. तो उसने ऑलमोस्ट राउंड द वर्ल्ड कर चुका था वो अपनी बीवी बीवी बी के साथ. और उसकी जो बोट थी वो बहुत स्ट्रांग बोट थी. मतलब मैं बोट पे गया हूँ, बोट सेल किया, इतनी वेल बैलेंस्ड और अच्छी सेल करने वाली बोट मैंने देखी नहीं अब तक. तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन में दिस गाय वाज बेस्ट टू विन द रेस. तो एंड एट द एंड ऑफ द डे वो विन करने वाला था. ही वाज द फास्टेस्ट, ही वाज फास्ट जा रहा था, उसको ही हैड नो इश्यूज इन द वे. बट वो काफी एक फिलोसफिकल आदमी था. ही वाज लाइक अ पोएट, राइटर, फिलोसोफर. मतलब वो तुम फोटोज में देखोगे ना ऐसा कोई फ्रेंच जो फिलोसोफर रहता है, ही वाज लिटरली वैसा था.
इज मेडिटेटिंग ऑन बोट.
और सेलिंग उसके लिए वाज अ वे टू गेट क्लोजर टू नेचर, टू वे टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एंड द यूनिवर्स. तो और उसका एक्चुअल मोटो फॉर जॉइनिंग द रेस वाज वेरी सिंपल. उसको रेस जीतनी थी एंड हिज प्लान वॉज टू आफ्टर विनिंग द रेस जो विनर्स ट्रॉफी है वो बेचने वाला था, जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट कि
इन वन फोटो इज
गोइंग
मेडिटेटिंग
राउंड द
ऑन
वर्ल्ड
बोट.
इज नॉट समथिंग of conquering the ocean, yeah, a victory over the nature. This is mere, मतलब एक बस, इट्स जस्ट अ थिंग यू डू, इट्स नथिंग बिग. तो उसका प्लान था कि यू यू कैन नॉट मेक अ रेस आउट ऑफ सेलिंग अराउंड द वर्ल्ड. मैं ये रेस जीतूंगा और मैं वो ट्रॉफी बेच दूंगा उसके बाद. तो उसका वो प्लान था. एंड देन ही वॉज ऑलमोस्ट, मतलब काफी स्पेस में था और उसने सदर्न ओशन क्रॉस कर लिया था एटलांटिक से. उसने ही वॉज कमिंग बैक नॉर्थ टू फिनिश इन फ्रांस. फिर तभी क्या मतलब लाइट बल्ब लगा उसके दिमाग में. उसने बोला आई डोंट केयर अबाउट दिस रेस, आई एम टर्निंग अराउंड. तो ही टर्न अराउंड, केप टाउन के आसपास गया साउथ अफ्रीका में. अपनी स्लिंग शॉट से उसने एक शिप के ऊपर मैसेज भेज दिया कि बोलते हैं मैंने ये रेस छोड़ दी है, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मैं जा रहा हूँ. और उसने फिर राउंड द वर्ल्ड वापस से एक बार किया और टहिटी पहुंच गया.
टर्न नहीं करता तो वो जीत जाता.
हाँ,
मतलब ऑलमोस्ट जीत जाता, लेकिन वो वहां से और आगे निकल गया. ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग.
तो वो राउंड द वर्ल्ड वापस से गया, टहिटी गया, और टहिटी में उसने एक परमानेंट लाइफ नई चालू कर दी वहां पे. और फिर उसके बाद वो काफी, मतलब ही वाज स्टिल फेमस. उसने बुक्स लिखे और ही वाज वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रीन पीस फेसेस ऑफ ग्रीन पीस इन दैट एरा. और काफी टहिटी और पैसिफिक एरिया में उसने एनवायरमेंटलिज्म के लिए काम किया. तो वो थोड़ा एक अलग, मतलब ही वाज अ फिलोसॉफिकल कैरेक्टर. तो मेरे एक्चुअली बहुत बार मैंने भी बात किया दारू पी के कि आई माइट आल्सो डू समथिंग लाइक दैट इन द रेस, बट आई वोंट गो टू टहिटी. आई विल कम टू नहीं नहीं, ही डाइड बिफोर आई कुड एवर बी क्लोज टू मीटिंग हिम. नहीं मतलब ऐसी दारू पी के हम बात कर रहे थे अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड लाइक मैं भी राउंड द वर्ल्ड कर लूंगा और इंस्टेड ऑफ फिनिशिंग मैं घूम के इंडिया वापस चले जाऊंगा जस्ट टू गो बैक होम.
वो हार के जीतने वाले को बाजी कर कहते हैं टाइप.
एब्सोल्युटली.
सो मैंने इनका एक कोट भी पढ़ा था जहाँ पे ये कॉम्पिटिशन जीतने के बजाय ये थोड़ा और उससे दूर चले गए. एंड ही वॉज बिकॉज ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग, सो ही एक्सप्लेन दैट वाई ही केप्ट ऑन सेलिंग.
एंड इफ यू सी, मतलब जितने भी रेस कैरेक्टर्स थे, इवन इन द 2018 रेस, एक था जो मतलब एकदम लास्ट था. ही फिनिश्ड 320 डेज, ऑलमोस्ट 100 डेज बिहाइंड द वन हु फिनिश्ड फर्स्ट. उसने भी ऐसी कुछ बातें बोली थी. एंड मतलब आई डोंट नो क्या टॉर्चर पसंद है उस आदमी को. ही इज डूइंग द रेस अगेन विथ मी इन 2022. तो ऐसे होते हैं काफी
इंटरेस्टिंग. द ओनली एंड्योरेंस स्पोर्ट और वॉट एवर इफ यू से आई डन इज द विपासना मेडिटेशन. So the rule is that you have to stay silent for 10 days inside an ashram. You can't talk to anyone, you can't read anything, watch any, you don't have television or anything, and you have to keep you have to live under a strict schedule and meditate all the time. So that, I mean, I can understand slight glimpse of ki wo dusre tarah ke jo endurance jo bahut zyada hote hain usse, lekin us is episode se kind of understand, because initial ke jo 3 or 4 din the, that was like wo emotionally itna zyada pareshan, and wo ek tarah se aapko puri tarah se drench kar dete hain 3-4 din initially, but slowly fir kuch na kuch realize hone lagta hai. Then I think after 10th day jab aap jaate ho, then you realize that something within you have completely changed. मतलब वो कुछ चीज़ बदली गई है हमेशा के लिए. और कोई चीज़ आप एक ले के चल रहे थे, एक अजीबोगरीब बोझ जो कि धीरे धीरे मेल्ट डाउन हो गया. तो मे बी बिकॉज दिस होल प्रोसेस जो कि इतना डिफिकल्ट है, इतना मुश्किल है, एट द एंड ऑफ इट यू गेन समथिंग, नॉट इन द मटेरियल वे, बट समथिंग विद इन यू चेंज.
एब्सोल्युटली. मैंने ट्राई किया, मैं 3 दिन के आगे नहीं जा पाया.
अच्छा, भाग गए 3 दिन में.
हाँ हाँ.
अच्छा, विपसना से भाग रहे हो और यहाँ जा रहे हो 2 से दिन.
मैं नहीं, मैं भी जाऊँगा. मैं I am going to go to Vipassana once before I leave for the race. ये मेरा practice है.
मैं दूसरी बार गया था तो मैं 3 दिन में आ गया था. First time I completed it, but the second time I couldn't. It's too difficult, too difficult.
I think मेरा अब मेरा हो जाएगा. तभी मैं बचपन में थोड़ा restless था. ये सब sailing के पहले मैं गया था विपसना में. तो अभी आई थिंक
that is possible.
Or maybe because there is, I think sailing mein you have a destination in mind, right?
Yes.
Like you are in the motion. Vipassana ke andar, you don't know what is the destination and you are not moving. So I think it's a very different kind of experience.
If you see in the 1968 race, na, wahan pe koi start line nahi thi, finish line nahi thi, sabko apne aap se start karna tha. The prestige of the race was not determined at that point. Wo bas ek race thi. Now, mere time pe bhi the race is more organized, the race is more followed around the world. To wo, and there is a particular goal ki main 4 saal se kaam kar raha hu ye goal ke piche. To it will be very different than Bernard Mortier ka time ya Sir Robin Knox Johnson ka time jab unhone kiya. Plan kar raha hu to sail in the Bermuda Triangle. To the Bermuda Triangle sail karne
ki sochta hu. So it's very interesting. Main bachpan se is cheez ko samajhne ki koshish kar raha hu. Bermuda Triangle ka kya hai? What is the thing? Can you explain what is the mystery or wo? Matlab kya chakkar kya hai Bermuda Triangle ka?
चक्कर तो कुछ नहीं है, बस द वेदर सिस्टम्स वहाँ पे बहुत सारे कन्वर्ज करते हैं, उसकी वजह से फ्रीक स्टॉर्म्स कभी कभी हो जाते हैं और वो डिसओरिएंटेशन हो जाता है. तो आई डोंट थिंक
वो बोलते थे कि गायब हो जाता है, तो व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड.
हाँ, मतलब दो चार शिप्स है और प्लेन्स है जो एक्चुअल में गायब हो गए और कभी मिले नहीं, दे वर नेवर फाउंड. बट ये बात हुई इन द 50s एंड 60s जब ways of finding and tracking were bahut kam the, to abhi it's different.
Abhi aisa koi mystery nahi hai uska.
Abhi filhal to I haven't heard any kuch aisa kuch hua hai in the recent past. Wahi plan hai ki wo 2000 mile ka ek circuit rehta hai, wo sail karunga main February, March, April mein, aur uske baad cross Atlantic jaunga ये जो ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका है वहाँ से फ्रांस जाऊंगा और फ्रांस में रेस स्टार्ट होगी सितंबर में. तो वही मेरा प्रैक्टिस होगा, विच विल बी एटलीस्ट 5-6 हज़ार माइल का सेलिंग. द रेस इज 27,000 माइल्स. बट वही फिर फिजिकल ट्रेनिंग चल रही है और देन देर इज मेंटल, क्योंकि ये इसमें GPS अलाउड नहीं है, तो आई हैव टू डू कैलकुलेशंस, लॉग टेबल्स लेके चेक करना पड़ता है और कैलकुलेशंस करके पता चलता है कि वॉट इज योर एक्चुअल लोकेशन. तो आधे घंटा तो वो कैलकुलेशन में लग जाता है. It's not like तुम्हें फोन में देखो तुम्हारे GPS coordinates आ जाते हैं. तुम्हें
but वो कैसे location calculate कैसे करते हैं?
So sextant रहता है. Sextant जो पुराने ज़माने में रहता है, which uses the relative location of the sun and then वो log tables सब कुछ use करके you can figure out what is your position on the earth. तो मेरा तो अब तक 5 mile radius में आया है, इतना एक्यूरेट खुद कभी कैलकुलेशन मैंने अब तक किया नहीं है, तो वही प्रैक्टिस चल रही है. तो वो करना पड़ता है. एंड देन जिस दिन क्लाउडी होगा तो फिर खुद के कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, कि उसको बोलते हैं डेड रेकनिंग बेसिकली, कि तुम्हारे पास एक कंपास है तो तुम कंपास डायरेक्शन में जा रहे हो और तुम एक एस्टिमेटेड स्पीड सोच रहे हो कि तुम्हारी बोट की स्पीड कितनी है. तो बोट का स्पीड का मेजरमेंट जो स्पीडोमीटर रहता है वो भी अलाउड नहीं है. तो बेसिकली हमें ऐसा पानी में थूको, फिर मेजर द टाइमिंग द स्पीड टेक्स फ्रॉम 1 point टू अदर, कितने 4 feet ट्रैवल करने के लिए वो थूको कितना टाइम लग रहा है, तो वो फिर वो उससे दिमाग से कैलकुलेट करो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, और वो देन उसके हिसाब से अपने चार्ट बेसिकली जो मैप्स बोलते हैं मरीन, उनको चार्ट्स बोलते हैं, तो चार्ट मैप अब पेंसिल से मार्क करते रहो कि तुम कहाँ पे पहुँचने वाले हो इतने टाइम में. तो वो एक मेंटल मैथमेटिक्स चलते रहता है, तो यू आर आल्सो एंगेज्ड ऑल द टाइम.
बट यू कैन स्लीप इन द नाइट, राइट?
तो वही स्टार्टिंग में मैंने बोला था, इट्स 20 मिनट्स ऑन 20 मिनट्स ऑफ ऑल डे. तो यू कैन स्लीप, तुम स्लीप कर सकते हो जहाँ पे तुम्हें पता है कि कोई शिपिंग आसपास में नहीं होगा या कोई बोट्स आसपास में नहीं होंगे. सो देर आर डेडिकेटेड शिपिंग रूट्स है इस दुनिया में. तो व्हेन जब तुम वो क्रॉस कर रहे हो तो देन यू हैव टू बी अवेक ऑल द टाइम. तो 20 मिनट ऑन 20 मिनट ऑफ. और 20 मिनट क्यों? क्योंकि तुम होराइजन देखते हो एक बार, तो तुम बोट के खड़े हो, तुमने होराइजन देखा कि एवरीथिंग इज क्लियर, एंड देन यू गो टू स्लीप. प्रॉब्लम इज तुम 4 घंटे बाद उठे तो तो बोट कुड बी समवेयर एल्स एंड समथिंग दैट वाज बियॉन्ड द होराइजन कुड हैव कम अपॉन यू ऑलरेडी. अगर एक आइसबर्ग होगा जो बियॉन्ड होराइजन है, जो 2-3 घंटे में तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, बट 20 मिनट होगा तो 20 मिनट तक आई वोंट रीच द होराइजन बट आई विल रीच हाफ वे देयर, तो देन आई कैन सी अगेन एंड देन स्लीप अगेन फॉर 20 मिनट्स. तो 20 मिनट के अलार्म लगा के सोना पड़ता
है. आइसबर्ग के डेंजर अभी भी हैं सी के अंदर, मतलब वो टाइटैनिक के टाइम से अभी तक है.
हाँ, तो हमारे इसमें बेसिकली एक सदन एटीट्यूड है जिसको हम क्रॉस नहीं कर सकते हैं. तो
क्रॉस
तो,
नहीं कर सकते.
हाँ, तो अगर तुम कभी नॉर्थ अमेरिका आए हो इंडिया से, तो प्लेन्स दे गो नॉर्थ टू द नॉर्थ पोल और फिर नीचे आते हैं, बिकॉज वो ग्रेट सर्कल डिस्टेंस बोलते हैं. सेलिंग के टाइम में भी ऐसा है, जब मैं केप टाउन से ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँगा तो वो जो मैप में स्ट्रेट दिखता है, बट द फास्टेस्ट रूट इज गो एज क्लोज टू एंटार्क्टिका एज पॉसिबल एंड देन कम बैक टू ऑस्ट्रेलिया, दैट इज द फास्टेस्ट रूट. तो हम कंपेटिटर्स है, वी वॉन्ट टू गो फास्ट, तो वी विल गो एज क्लोज टू एंटार्क्टिका एज पॉसिबल. तो एंड हम तभी रहेंगे तभी समर में रहेगा, समर में आइसबर्ग्स टू कम आउट एंड हिट.
बट वो डैमेज करते हैं बोट को, मतलब पूरी तरह से, इफ देयर इज अ.
हां हां, क्यों नहीं कर सकते हैं, ऑफ कोर्स. मतलब अगर किसी ने देखा नहीं बराबर से एंड मतलब छोटा आइस, हमारी बोट तो छोटी है, टाइटैनिक नहीं है, बट इवन अ स्मॉल आइसबर्ग कैन डैमेज द बोट वेरी नाइसली. एक राइट एंगल पे, राइट स्पीड पे, राइट पोजीशन में इवन अ स्मॉल आइसबर्ग कैन सिंक योर बोट वेरी इजीली.
आर देयर आल्सो सम डेंजर ऑफ कुछ शार्क टाइप का कुछ आ जाए, ऐसा कुछ होता है?
सो देयर आर मल्टीपल, मतलब चीजें हैं जो बोट में करनी है. तो बोट में क्या होता है कि समुन्द्र में इतनी टाइम जब बोट रहेगी तो बोट के नीचे ग्रोथ आ जाती है, बार्निकल्स जिसको बोलते हैं, शेल्स जो रहते हैं वो ऐसे बोट पे ग्रो करना चालू हो जाते हैं, क्योंकि एक बोट सरफेस है बेसिकली फॉर द एल्जी एंड एवरीथिंग टू ग्रो.
अच्छा अच्छा.
तो हम जंप मारते हैं क्लीन करने के लिए वंस इन अ मंथ समथिंग इन द मिडल ऑफ द सी. So that could attract something or the other. So we have to be vigilant. So we, jo first race tha, uski ek book thi, the guy who won Sir Robin of Johnson, The World of My Own. So he had jumped into the water to ek thoda leak fix karne ke liye, underwater leak fix karne ke liye, wo gaya tha. Aur fir shark aa gaya tha. So and he just barely escaped. So वैसा है, तो वो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हेन वी डू समथिंग लाइक दैट. या अगर ऐसी कोई किस दिन हवा नहीं है, बोट ऐसी चल नहीं रही है, तो मूड आ गया तो स्विम करने के लिए, तो सोच के स्विम करना पड़ता है. एक रीसेंट ट्रेंड है जो किलर वेल्स रहते हैं, बड़े वाले. बचपन में मूवी देखा हुआ फ्री विली, बहुत बड़े रहते हैं किलर वेल्स. तो रिसेंटली ऑफ द कोस्ट ऑफ पोर्चुगल और स्पेन थोड़े किलर वेल्स बोट को अटैक करने लग गए. इंसानों को नहीं मारते, दे डोंट ईट ह्यूमंस, दे ईट स्क्विड और सब कुछ छोटे छोटे फिश, पर उनका नाम किलर व्हेल है. बट वो बोट्स को अटैक करना चालू कर दिया उन्होंने, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, क्योंकि वो अगर बोट ने अटैक कर दिया तो दे हैव इनफ फोर्स टू मेक अ होल इन द बोट. तो फिर और एक बंदा था जिसने राउंड द वर्ल्ड किया था, उसकी बोट एक्चुअली वॉज बिल्ट इन कलकत्ता. उसके बोट में एक शार्क ने होल बना दिया था.
अच्छा.
इन मिडल ऑफ द पैसिफिक, और फिर उसको मतलब बोट को एक एंगल पे सेल करनी पड़ी सो दैट वो होल फिल नहीं हो जा रहा है, एंड ही सेल्ड राउंड द वर्ल्ड लाइक दैट दैट बोट एट दैट एंगल. काफी डेयरिंग लोगों ने राउंड द वर्ल्ड.
सो यू कम फ्रॉम बहुजन बैकग्राउंड, सो आई वाज आल्सो क्यूरियस दैट इज देयर एनी लिंक ऑफ योर कम्युनिटी एंड द ऑक्यूपेशन विद सी, सम काइंड ऑफ रिलेशन विद द सी?
तो सी से तो नहीं है. तो आई कम फ्रॉम द भोई कम्युनिटी ऑफ महाराष्ट्र, एंड भोई इनलैंड फिशरमैन थे. सो देयर वर टू ऑक्यूपेशन जो करते थे, पालकी बेयरर्स थे और रिवर फिशरमैन थे. तो सॉर्ट ऑफ कनेक्शन है, बट आई डोंट थिंक कोई समुंदर से कोई कनेक्शन है. बट मैंने कहीं पे तो पढ़ा था, मैं जब डिग्री की सोशियोलॉजी क्लास में था, मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, तो मैंने एक कास्ट ऑफ मुंबई बुक पढ़ी थी, तो उसमें लिखा था कि भोई वर इन द अर्ली 1400s they were also fishing in the sea, or they were one of the first inhabitants of the kya bolte, of the island of Mumbai, jo tabhi ke islands hai tabhi. So they were one of the, that caste was one of the first inhabitants of that. Hamari caste actually came down from Rajasthan.
Oh, acha.
Rajasthan. So they, I think, originate Orissa mein hue. Orissa se Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat aur Maharashtra. Aisa ghum ke aaya.
So what is the passion behind competition for such kind of race? This is something which can be dangerous both physically and mentally. It is extremely risky and really test your human capability. So, क्या mental state होती है इसके पीछे, या फिर participant के दिमाग में क्या चल रहा होता है कि मुझे क्यों करना है ये सब?
Recently, actually, I got very interested in astronomy. और तभी मुझे पता चला दो satellites है. Voyager 1 and Voyager 2. So, have you heard of them?
No, I haven't heard.
हाँ, तो Voyager 1 and Voyager 2 है जो 1970s में लॉन्च हुए थे, और उनको ऐसा स्पेस में छोड़ दिया. So they are going to keep traveling through space for the next 78,000 years before they actually enter the gravitational pull of a star. मतलब that is the vastness of the planet and the world. कि and एक जो
can you repeat one more time.
So ये जो satellites है ना, they have left the solar system.
Okay.
Solar system के बाहर निकल चुके हैं वो. और for the मतलब NASA ने trace किया है for the next 78,000 years. These satellites will keep traveling till they actually get close to a sun or a star.
Oh, acha.
Or when they left, achha. And when they left, ek काफी Carl Sagan ka ek photo hai, which was taken by Voyager. It's called the pale blue dot. जो लिया था एक बहुत दूर से, जो Neptune के बाहर से लिया था actually. Neptune के थोड़ा आगे से photo लिया था of Earth, which was like a minuscule dot in the world. तो मतलब when you see that or vastness of the world that you see, we are wo dot ke andar bhi ek choti si chitti hai hum. Aur I cannot matlab abhi I am not talented enough to be an astronaut or to go see the world or wo sab karne ke liye. To mere power mein abhi hai ki main sail kar sakta around the world and see the corners of the sea of the world, to main wo karunga.
So very interesting and scary as well. ये सोचना स्पेशली कि हम एक्चुअली कुछ भी नहीं है देखा जाए तो. हम अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, एक एक चीज़ को हम कैलकुलेट करते हैं, सोच के चलते हैं, बट लार्जर स्कीम ऑफ थिंग में तो हम मतलब कुछ भी नहीं है.
आर 70-80 ईयर्स आर नथिंग. मतलब इमेजिन किंग्स लाइक चंद्रगुप्त भी नहीं छोड़ो, अमोघ वर्ष हु वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क इन द वर्ल्ड फॉर बिफोर किंग एलिजाबेथ. Do you know that? Jo Amogh Varsha tha, who was kiska Rashtrakuta dynasty tha, matlab almost from Mewar down to the south rule karta tha. He was before King Elizabeth, jo Queen Elizabeth hui, he was 80-90 years usne rule kiya tha, and no one remembers him anymore. Log ye faltu rulers ko jante hain abhi. So in history we'll all be forgotten, and our 80 years of our life are minuscule.
Absolutely.
If you think about dinosaurs, were 1 billion years ago, yaar.
1 billion.
Aur abhi yesterday kal ek launch hua actually, ek satellite ka, which is going to an asteroid near Earth. और वो एस्ट्रॉइड को अब उसके ऊपर बॉम्ब फोड़ने वाले हैं टू डिफ्लेक्ट इट अवे फ्रॉम अर्थ नेक्स्ट ईयर 2022 में.
बट ऐसा कुछ खतरा है क्या एस्ट्रॉइड का अर्थ के ऊपर?
ये टेस्ट वाला खतरा है. मतलब ये बेसिकली दिस एस्ट्रॉइड वाज नेवर, मतलब इस एस्ट्रॉइड का चांस ऑफ हिटिंग द अर्थ वाज 85,000 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी तो नहीं होगा, मतलब वो एस्ट्रोइड को अर्थ के राउंड घूमने में 300 साल लगते हैं।
85,000 का अभी से कर रहे हैं।
हाँ, तो अभी ये टेस्टिंग चल हो गया उनका कि अभी से बॉम्ब फोड़ेंगे और एस्ट्रॉइड को तोड़ेंगे।
अच्छा है, वो इंजीनियर वगैरह नहीं है, वो सोचते कि एक दिन पहले देखेंगे हिट करने से पहले।
हाँ, बट देर इज एन एस्ट्रॉइड जो आई थिंक 2063 में इज गोइंग टू कम क्लोज एंड कुड कम एंड हिट द वर्ल्ड।
2063
हाँ, एस्टेरॉयड बेनू नाम है उसका। वो आई डोंट नो इफ यू रिसेंटली देखा था, एक नासा ने एक एस्टेरॉयड पे लैंड करके उसका डर्ट उठाया था, वो था
ओ
एस्टेरॉयड
अच्छा, नहीं
बेनू।
आई डोंट
हाँ, नहीं 2-3 महीले पहले ही हुआ, लैंड किया एस्टेरॉयड पे और पत्थर उठाए, और ये एस्टेरॉयड बेनू ही है जो बहुत छोटा सा, मतलब गिन के लेस देन 1 किलोमीटर बड़ा है, बट 2063 में इट्स गोइंग टू कम क्लोज, 1 in 8,000 चांस है कि इट कुड कम एंड हिट द वर्ल्ड एंड हम भी डायनासोर बन जाएंगे।
नहीं, बट ये सिर्फ 1 किलोमीटर लंबा बड़ा एस्ट्रॉइड है।
हाँ,
हाउ इट विल डिस्ट्रॉय द होल अर्थ?
उसका कुछ तो मतलब द मैग्नीट्यूड विल बी क्रेजी अगर हिट किया तो, मतलब इट विल नॉट डिस्ट्रॉय द अर्थ, इट विल डिस्ट्रॉय अस, बेसिकली इट विल डिस्ट्रॉय द क्लाइमेट फॉर अस, तो हमारा
अच्छा,
जीना आराम हो जाएगा।
कई लोग वेट कर रहे हैं खत्म होने के, दुनिया बड़े नीलिस्ट लोग, आर्टिस्ट नीलिस्ट। सो मेरे कई दोस्त लोग 2012 में खुश हो गए थे कि 2012 तक ही जीना है, तो पढ़ाई लिखाई भी छोड़ दी उन्होंने, मस्ती कर रहे थे। 2012 में दुनिया खत्म नहीं हुई, बहुत परेशान हो गए, अभी तक रो रहे हैं।
मैं तो यार रुका हूँ कि ह्यूमंस बिकम इमॉर्टल बिफोर आई डाई,
अच्छा,
जीने मिल
यू
जाए
वांट
थोड़ा
टू, यू आर
यार।
इंटरेस्टेड इन द वर्ल्ड?
ऑफ कोर्स यार, मतलब कहाँ से कहाँ पे पहुंच गए हम लोग, मतलब हम हमारे बचपन से अब तक कहाँ पे पहुंच गए, तो यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू कम नेक्स्ट। मतलब जब इफ यू सी द गुड इन द वर्ल्ड, प्रॉब्ली एक 500 साल बाद हम पॉसिबली वर्ल्ड हंगर भी सॉल्व कर देंगे,
नहीं, बट
बट यू नेवर नो।
इमोर्टल रहना तो बहुत वो है ना, कि इट्स अ लेबर टू कंटिन्यू फॉर सो लॉन्ग यार।
मैं मेरे वाइफ को ही पूछ रहा था, अगर इमोर्टलिटी होगी तो हम कितने साल शादीशुदा रहेंगे।
मतलब एवरी डे आई थिंक पीपल ऑल्सो गेट बोर्ड आफ्टर अ वाइल, सम पीपल हु, कई ओल्ड लोगों को भी मैंने देखा, दे बिकम बोर्ड बाय लिविंग। एक पर्टिकुलर बंदे से मैं मिला, एक कोई उनकी एज कुछ थी, तो बोलते यार बहुत हो गया, बस मरना चाहता हूँ। मैंने, क्यों? बोलते यार बस मरना चाहता हूँ, बहुत हो गया यार। मैंने कहा आप परेशान हो गए लाइफ में? बोला कि नहीं नहीं परेशान नहीं यार, मतलब मैं बोर हो गया। मैंने कहा अच्छा। बोलता फिर अभी वो ही वो मतलब हिंदू फिलोसफी मानता था, तो बोले कि अभी मैं जल्दी से एक नेक्स्ट बर्थ लेना चाहता हूँ, इस बर्थ में मुझे मजा नहीं आया ज़्यादा। एंड ही वॉज वेरी सीरियस अबाउट इट।
बट आई थिंक दैट इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ एजिंग, वो एजिंग की वजह से होगा, इट्स नॉट बिकॉज, क्योंकि बॉडी साथ नहीं दे रहा है बेसिकली। पर अगर एजिंग कंट्रोल हो गया एंड देन इमोर्टलिटी आ गया तो देन कुड बी डिफरेंट, बिकॉज अभी तो हम अगले 30 साल में मार्स पहुंच जाएंगे यार, बट प्रॉबली इन द नेक्स्ट 300 ईयर्स वी माइट गो आउटसाइड द सोलर सिस्टम। मुझे मार्स की कॉलोनी दिख रही है बिफोर आई डाई।
ह्यूमंस शिफ्ट करना चालू हो जाएंगे 30 साल में।
सिचुएशन नहीं, ह्यूमन शिफ्ट नहीं होंगे, हम प्रॉब्ली लैंड करेंगे पहली बार 30 साल में।
वहां पे भी फिर होंगे मुखर्जी नगर, पटेल नगर,
एमजी रोड,
जी रोड,
एमजी रोड सबसे पहले
वेरी
बनेगा, बाकी कुछ बने ना बने एमजी रोड बनेगा।
इंटरेस्टिंग।
मेरा वही, मेरा डर लग रहा है मैं भी डोनाल्ड क्रॉस ने बन जाऊँ, ये सब सोच सोच के, यूनिवर्स और वास्टनेस एंड एवरीथिंग। तो आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल माय अर्ज टू थिंक अबाउट दोस थिंग्स,
नो नो नो, इट्स वेरी
व्हेन यू पुट
इम्पोर्टेंट।
इन द पर्सपेक्टिव, मतलब हाँ अभी एक रेस के बारे में सोच रहा हूँ मैं जो 300 दिन का हो रहा है, इवन इफ आई विन द रेस 500 साल बाद मुझे कौन याद रखेगा, मतलब तुम्हें करना है तो कुछ बड़ा करना पड़ता है जैसे बाबा साहेब ने किया।
बट याद रखना क्यों जरूरी है?
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बट
बिकॉज द थिंग इज दैट लोग इतने इंटरेस्टिंग, या उनके ओपिनियन या सोच इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है कि इट वुड इम्पैक्ट पर्सनली मी दैट आई बी इन देयर मेमोरीज और इन देयर गुड बुक्स और नॉट, बिकॉज लोग अपनी लाइफ में इतने परेशान है कि और
हाँ
जो डे टू डे लाइफ और जो उसका स्ट्रगल है वो खुद ही उसी चीज़ में अटके हुए हैं, और उनकी जो लाइकिंग डिसलाइकिंग है वो भी बहुत फ्रेजाइल है, राइट? दे माइट लाइक यू नाउ, दे माइट डिसलाइक यू आफ्टर अ व्हाइल. सो टू गेट इनटू दिस थिंग ऑफ सम लाइक एक इतने अब इन्हीं झुंड, मतलब एक लोगों का झुंड जो आपको पसंद करे या नहीं करे, तो वो मतलब आई डोंट थिंक इट इज वेरी रेलिवेंट. इट मे गिव सम काइंड ऑफ अ किक फॉर अ ब्रीफ मोमेंट ऑफ टाइम, बट पर्सनली आई डोंट थिंक ऑफ इट दैट वे.
मतलब वही, हाँ, मतलब आई अंडरस्टैंड दैट कि इवन इफ आई थिंक कि मैं ये रेस जीत गया, मैंने कुछ बड़ा काम कर लिया एंड आई गेट रिमेम्बर्ड 500 ईयर्स फ्रॉम नाउ, इट्स इररिलेवेंट टू मी एज अ पर्सन द मोमेंट आई डाई.
यस यस.
तो द रिलेवेंस ऑफ दैट इज मतलब वही है कि करना है तो खुद के लिए करना है, नहीं तो फॉर योर नेम बीइंग देयर is different. But you know what, to think about it, ye hamare liye bhi important hai, like what you are doing. There is no big Bahujan podcaster, matlab hai but itne famous nahi hai, and because of what is his name, I forgot, Shudra TV wale, Sumit Chauhan, in a very small way he is inspiring others to do it too, and in our community that is making a big difference. Abhi maine main mere community se pehla banda hu jo education karne ke liye bahar gaya, aur is saal hi aur 3 log aa rahe, and wo difference banta hai ki
I think that it becomes, but I personally think of it as kind of a, आप अगर जिंदा हो और आपने ये चीजें देखी हैं पहले भी और आप इस पोजीशन में हो, देन आई ट्रीट इट एज ए ड्यूटी टू डू समथिंग बिकॉज इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी और इट्स माय मॉरल इच एज वेल कि आई विल नॉट बी हैप्पी इफ आई डोंट डू इट. सो आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू समथिंग. नाउ आई एम इन द पोजीशन. अब कम्युनिटी में लोग इस पोजीशन पर नहीं पहुँच पाए या फिर हमारी बात ही कभी नहीं सुनाई दे रही थी, तो अभी अगर पोजीशन है, चीज़ है, देन आई हैव टू डू इट. इट आई टेक इट एज अ ड्यूटी एंड आई टेक इट एज अ चैलेंज भी है इसके अंदर, बट वो एक बहुत ही पर्सनल एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक रीज़न बन जाता है ये. सो आई मीन दैट कम्स फ्रॉम दैट. सो सिमिलरली, so it's not like that I want to create a name or mujhe log yaad kare ya fir koi mujhe aisa kuch bada mane ya chota mane, that's a different thing, but it's my moral responsibility and it gives certain meaning to my life, so that is very important, so that's why I do it.
Ha, to matlab I have something similar, matlab mujhe bhi karna hai ki ye duniya mein koi kiya nahi iske link ke liye, matlab aisa koi bada such kind of an adventure sport. So as for the community, wo ek cheez to karni hai, but there is a ulterior personal motive behind that also, ki I want to be remembered as one of the first. Aur last 2 saal mein COVID mein jo hua hai, mere family mein 4 log ki death ho gayi COVID mein, matlab aur young the usme se 2 log, to matlab kal kya dekha hai kisi ne, to ye chance tha mujhe mila aur maine I jumped on it.
So thank you so much, Gaurav, for coming to the podcast, and best of luck for this unique race. So this was episode 42. Please do support the podcast on Patreon, buy me a coffee or PayPal. All the links are mentioned in the description box.